ओम नमः भगवते वासुदेवाय. I have to tell you, and I'm going to be stern about it. Stern, you know the meaning. Be prepared, you know. Don't. ISKCON has to learn how to be professional. Translate. This is not professional. Microphone ready. Chair ready. Everything ready. That's professional. If we can't learn how to be professional, we are not going to spread Krishna consciousness properly all over the world.
तो महाराज बता रहे हैं कि कैसे ISKCON के भक्तों को जो है वो प्रोफेशनल होना सीखना चाहिए. किस तरीके से सब तैयारी पहले करके रखें, माइक्रोफोन हो चाहे सीट हो चाहे व्यास आसन हो चाहे ग्रंथ हो किताब हो, हर चीज पहले तैयारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए.
इफ वी आर जस्ट ए स्पेस्ड आउट हिप्पी लाइक ग्रुप पीपल वोंट. नो आई एम नॉट जोकिंग, इट साउंड्स फनी, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल. पीपल विल नॉट टेक अस सीरियसली. Oh yes, ISKCON, yes, those horrible people. And this will be the response. Unless we learn to be professional. That was not professional. Microphone is ordered to be over here when it's time for the speaker to speak, not for the microphone to be elsewhere. Clear? And somebody has to take responsible. Who is responsible? Temple commander? Huh? Kadamba? Oh yeah? Is that true? You're responsible for the microphone system? Well, he just appointed you instantly in order to get off the hot seat, right? Are you supposed to be in charge of the microphone? Then listen what I'm saying. Learn to do... Hello, I'm over here. I'm not over there. Learn to do things professionally. Translate.
तो महाराज बता रहे हैं कि हर चीज बहुत ठीक ठीक तरीके से होनी चाहिए, सब कुछ समय पे होना चाहिए, सब चीजें पहले ही तैयार होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल प्रोफेशनली होना चाहिए.
So before we begin class today, let us recite the Guru Parampara pranams, please. So today being the disappearance of Jayananda Prabhu, it's appropriate to say some, give him some honor and some glory.
तो आज क्योंकि श्री जयनंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है तो हम उनके गुणगान आज करेंगे.
But I would like to say that Jayanand Prabhu was a personal friend of mine. So it's not some theoretical fantasy talk the way most Prabhus these days are just manufacturing mythologies around Jayanand Prabhu. They didn't know him. They weren't a personal friend of him.
तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मैं जो जयनंद प्रभु थे मेरे बहुत ही निजी मित्र थे, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता था. ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करूंगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था तो कुछ उनके बारे में बताऊंगा.
जयनंद was in his own way an advanced devotee.
तो जयनंद प्रभु अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट भक्त थे.
But in all the mythology that's manufactured about him by people who never met him.
तो उसके उनके बारे में कुछ ऐसे अफवाह सी हैं.
They missed that he was very human. They missed that point. They tried to create some kind of mythological character. But he was very human, tried to understand. Although he was a saintly person, he was very human.
तो जयनंद प्रभु की विशेष गुण यह था, हालांकि वो बहुत अच्छे भक्त थे, एक साधु थे, लेकिन वो बहुत ही...
We can't say ordinary because he was extraordinary. He was a Vaishnav. He was a Vaishnav.
वो एक बहुत ही अच्छे वैष्णव थे और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था बाकी लोगों के साथ.
But at the same time, he was very, in America we say earthy, you know that saying, earthy, very grounded, earth-like person, you know. He was not floating in the clouds the way the mythology has it, you know. Like with, nowadays, you know, pretty soon they'll make pictures of Jayananda with a halo like Jesus, you know. This, because people are looking for mythology, but I'm telling you the facts because I was his personal friend, okay?
तो मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत उनका निजी मित्र था, तो वो बहुत जमीनी स्तर पे ही रहते थे और मतलब हवा की बातें, हवा में रहना ऐसे नहीं किया करते थे.
Of course, I don't mean by this stern reaction to mythology to minimize his saintly qualities. You see?
तो मैं किसी रूप में भी जो ऐसे उनके बारे में कुछ ऐसी अफवाह भी है लेकिन मैं किसी रूप में भी उनका ऐसे मेरा प्रयास कभी नहीं रहेगा कि उनका मैं गुणगान में कुछ
establish the truth about his personality. Who was Jayananda?
मैं बस उनके बारे में सत्य बताना चाहता हूँ कि जयानंद प्रभु कौन थे.
What was his, you know, the word demeanor? What was his demeanor?
उनका व्यवहार कैसा था?
It's not what they're making up and manufacturing. It was different.
मैं मनोकल्पना से नहीं बोल रहा हूँ, अपने निजी संबंध से बोल रहा हूँ.
His most outstanding saintly quality. Was his humility.
और जो उनका अंदर सबसे अच्छा गुण था वो था उनकी विनम्रता.
He was exceptionally humble devotee.
वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र भक्त थे.
He was very self-sacrificing.
और वो काफी खुद को बलिदान दिया करते थे या बहुत ही
त्याग
उनके अंदर जो है त्याग की भावना रहती थी.
Lamentation. Due to separation of devotees and the Lord, Patita Pavana is mentioned of the Vaishnavas. Advanced Vaishnava is Patita Pavana.
और जब एक भक्त जो है वो भक्ति में बहुत ही उन्नत होता है, तो उसका एक गुण होता है पतित पावन.
Jayanand Prabhu was always patit, always.
और जयानंद प्रभु जो है हमेशा अपने आप को पतित मानते थे.
He was a very caring and loving person.
और बहुत ही प्रेम और स्नेह दूसरों को दिया करते थे और उनके साथ रहा.
He was always affectionate to all the devotees.
सभी भक्तों के साथ उनका बहुत ही प्रेममय संबंध था.
But the mistake is to paint a picture that he was Paramahansa.
लेकिन हो सकता है गलती ये होती है कि जब उनको एक परमहंस के रूप में जो है दिखाया जाता है.
One of my god brothers who knew him also had a sentimental attachment for him.
तो मेरे एक गुरु भाई हैं जो कि जिनका उनके प्रति बहुत ही एक.
So he wrote a book. Okay.
तो उनके प्रति बहुत ही गहरी आसक्ति थी मेरे गुरु भाई की.
He wrote a book called Jayananda Thakur in the Vedabase.
और उन्होंने किताब लिखी है जयानंद ठाकुर जिस जो आप वेदाबेस में आप देख सकते हैं.
But Thakur is meant for Paramahansa. Thakur is meant for Uttama Adhikari only. You cannot say to Thakur somebody else, something. Jayananda Prabhu offering my Dandava Pranams and giving him a hug also, he was not on that Paramahansa plane. He was not an ordinary devotee either, in between. That's called Madhyama Adhikari. In between means Madhyama Adhikari. That's what he was.
तो ठाकुर जो ये उपाधि है ये एक परमहंस भक्त को दी जाती है. तो जयानंद प्रभु मैं उनको प्रणाम करता हूँ और किसी रूप में उनका गुणगान कम नहीं करना चाहता, लेकिन जयानंद प्रभु जो है वो साधारण भक्त भी नहीं थे और परमहंस स्तर पे भी नहीं थे, वो मध्यम अधिकारी स्तर पे थे.
But I don't want to paint a picture of excessive negativity.
तो मैं कुछ ऐसा चित्र नहीं बनाना चाहता जिसमें लोग उनके प्रति एक नकारात्मक सोच.
It's just to put things in proper perspective.
बस सही सही चीजों को बताने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ.
I don't believe it's proper to call him Srila Jayananda.
तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा अगर हम उनको श्रीला जयानंद ठाकुर के रूप से उनको पुकारें.
As far as I know, the title Srila was outlawed by the GBC for anyone except Srila Prabhupada and our prior acharyas. It was outlawed in 1998, so it's GBC law, but nobody knows what GBC law is. They don't even know what it is. As far as I know, it was outlawed along with they also threw out the pada names. You know, it's out, our pada names are outlawed, but devotees don't pay. They don't know these things.
तो इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी जो है उनमें एक ऐसा कानून निकला था कई साल पहले कि श्रीला या पाद ऐसे शब्द जो हैं वो चिला प्रभुपाद या उनके पूर्वती आचार्यों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. किसी वर्तमान आचार्य के नहीं.
I'm only saying this to put things in proper perspective, but not to minimize his saintliness.
तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हम लोग सही सही तरीके से चीजों को समझ सकें.
But he was
इसी तरीके से मैं उनके गुणों में जो है कुछ मैं उनको उसको कटौती नहीं करना चाहता.
He was not the kind of saintly person that as soon as he walked into the room, he was glowing and everybody say, oh my God, a Paramahansa has appeared amongst us. It wasn't like that. This is my theology.
तो ऐसा नहीं था कि जब श्री जयनंद प्रभु जो हैं वो मंदिर में आते थे तो वो बहुत ही खिल रहे होते थे या उनके शरीर से क्रांति निकल रही होती थी जैसे परम भक्त की निकलती है
But because he was a very thoughtful and sacrificing person, he was a pure devotee in the sense of one completely sold out to Srila Prabhupada and following Prabhupada's instructions. In that sense, there are many definitions of pure devotee. He was certainly a pure devotee in terms of surrender to Prabhupada. But he was still, he was not Paramahansa, but he was a pure devotee. Try to understand.
So, we need to understand that he अपने आप में एक शुद्ध भक्त जरूर थे क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित थे उनके अंदर त्याग की भावना रहती थी
What bothers me in all of you know mythology about Jayananda is that they don't know anything they never say anything about his human side they don't say anything about they pretend that he was I mean they manufacture a persona you know the word persona they manufacture a persona they manufacture They manufacture that person, I'm saying, that if he walked in the door, everybody says, oh my God, a Paramahansa has arisen, and seeing the effulgence, everybody offered their dandaprapanams. It was not like that. That's not who he was.
So, कहने का मतलब यह है कि हमें अगर सही तरीके से समझें, तो वो ऐसा नहीं था जयनंद प्रभु कि वो एक परमहंस सर पे थे, वो आते थे, तो उनके शरीर से इतनी क्रांति निकलती थी, सब अचंभित रह जाते थे, उनको प्रणाम किया करते थे। वास्तु में देखा जाए बहुत सुंदर भक्त थे बहुत सुंदर व्यक्ति थे
Of course, if he arrived now at our door all of a sudden, naturally we should offer our dandavat pranams. If he arrived on a swan plane, he would come on a swan plane and we would certainly should offer our dandavat pranams, certainly.
अगर हो सकता है कि वो कोई हंस के वाहन में अगर आते हैं तो हमें उन सबको प्रणाम करना चाहिए अगर ऐसा हो तो
In the process of doing his service, he was a very hard worker. He always worked hard.
बहुत ही मेहनती थे और खूब मेहनत किया करते थे सेवाओं में
He probably slept very little.
और वो रात को बहुत ही थोड़ी देर विश्राम किया करते थे
So in the process of doing his service he would worry a lot he would worry a lot nobody will tell you that but Jayananda used to worry a lot
तो सेवाओं करते करते जो है वह बहुत ही कृष्ण के लिए चिंता लिया करते थे ताकि सेवा जो है ठीक तरीके से वो कर सके
You can say that it was transcendental worry because his worry was about taking care of the devotees his worry was about how to get the service done it was you can call it transcendental worry but he was worried he always worried you could see on his face was you know wrinkled brow often because he was worrying about things You know, how are things going to go? He was worried about his service. So it was transcendental worry, but it showed on his face, you know. Not that he was always beaming, smiling. It wasn't like that. That's not the real Jayananda.
So, halaki ye jo chinta wo kiya karte the, ye apne aap mein adhyatmik hai, transcendental hai, adhyatmik chinta hai, ki kaise bhaktoon ki seva achhi tarike se ho sakti hai, kaise guru ke aadeshon ka palan ho sakta hai. ऐसा नहीं था कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हमेशा तेजवान थे ऐसा नहीं था
But always smiling is not a requirement for a pure devotee. Try to understand. Obviously, pure devotee I've discussed many times. It's like a pyramid-shaped definition.
तो शुद्ध भक्त का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और आपको हमेशा जो है एक अच्छी मुद्रा में दिखाई देंगे तो शुद्ध भक्त जो है इसका जो एक परिभाषा जो है वो एक कोन कोन के रूप में है
the broad definition of pure devotee on the bottom is who is sold out to his guru maharaj and is strictly following the vani the instructions in our line means following prabhupada's instructions following guru parampara who is strictly following guru parampara who is sold out to guru and who's serving the mission of Srila Prabhupada, such a person following the vani of Srila Prabhupada can be called a pure devotee.
तो अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें तो ये शुद्ध भक्त हम उसको कहेंगे जो अपने गुरु के आदेशों के प्रति बिका हुआ है, पूर्ण रूप से समर्पित है, या शिला प्रभुपाद जी के आदेशों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसे भक्त को भी हम लोग शुद्ध भक्त कह सकते हैं।
So he didn't have anxiety for himself. He wasn't interested in his own liberation.
तो उनको अपने लिए चिंता नहीं थी और वो अपनी मुक्ति के लिए जो है प्रयास नहीं किया करते थे।
He was interested in this paradukha dukhi. He was interested in how could he relieve the suffering of others.
और उनकी दिलचस्पी थी paradukha dukhi, कैसे दूसरों के दुखों को कम किया जाए।
So that these are signs of a pure devotee who are very concerned about relieving, serving others, and his service attitude was unparalleled.
और ये एक विशेष गुण होता है भक्तों का, कैसे दूसरों की सेवा की जाए, और ये जो उनका गुण था वास्तव रूप में अद्भुत था।
Although for a while he was president of the San Francisco temple,
कुछ देर के वो सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष भी थे,
but it wasn't really the right service for him.
लेकिन वास्तव रूप में उनके लिए वो सही सेवा नहीं थी।
It just caused him anxiety.
वो सेवा उनको ज्यादा चिंता दिया करती थी।
Because he was a working man. Try to understand. The real Jayananda was a working man. He loved to work and he loved to work hard.
और जयनंद वास्तव में कर्मशील भक्त थे, उनको ज्यादा अच्छा लगता था जब वो मेहनत किया करते थे।
So being a temple president was not the right service for him. It was too bureaucratic or something. You know, he would take more pleasure in going out and change a tire on a car. I'm serious. That's the real Jayananda, you know. But he was not a sudra. He was definitely a Brahmin. You see, try to understand these things. This is, you know, part of understanding our conception of Krishna consciousness.
तो जैनन प्रभु के लिए ये अध्यक्ष की जो सेवा थी ये बहुत ही औपचारिक थी। वो चाहते थे कि वो बाहर जाएं, हो सके तो गाड़ी का टायर बदल दे, लेकिन ये शूद्र की मानसिकता नहीं है, ये ब्राह्मण की मानसिकता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए।
If you change a tire on Krishna's car, that's not sutra.
तो अगर आप कृष्ण की या मंदे की गाड़ी का टायर बदलते हैं तो वो शूद्र मानसिकता नहीं है।
Because the car belongs to Krishna, belongs to Prabhupada, belongs to ISKCON. Therefore, it's a transcendental car. And that's why they have to be taken care of.
क्योंकि वो गाड़ी जो है कृष्ण की है, इसलिए उसका ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए।
So Jayananda Prabhu would rather change the tire on a car than sit behind a desk in America called pen pusher, you know, some function, some, you know, writing letters and just giving instruction to others and sitting one place. That was not Jayananda. He wanted to go out and do hands-on work. He wanted to go out and work hard. He wanted to go out and do service.
तो जयनंद प्रभु ऐसे भक्त नहीं थे जो कि एक टेबल के पीछे चिट्ठी लिखे या दूसरों का आदेश दे ऐसे काम करें। उनकी इच्छा थी वो मेहनत करें, बाहर जाकर प्रचार करें, संकीर्तन करें।
Of course he was and still is very very dear to Srila Prabhupada.
और निश्चित रूप से जयनंद प्रभु जो है श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे।
When he was with us, when Jayananda was with us, Prabhupada would often ask, "Where's Jayananda?"
Prabhupada Jayanand Prabhu ko bahut prem kiya karte the, aur jabhi bhi Srila Prabhupada aate the hamare mandir mein to hamesha pucha karte the Jayanand kahan par hai.
But Jayananda might be somewhere else doing, working hard, doing some service, you know.
Aur Jayanand Prabhu nishchit roop se kahin na kahin koi na koi seva mein lage hote the.
He always noticed if somebody was missing. Prabhupada always noticed. He was very personal, you know.
Aur Srila Prabhupada jo hain wo bahut hi पर्सनल थे। अगर कोई भक्त उनको दिखाई नहीं दिया करता था किसी मंदिर में तो अक्सर उनके बारे में पूछते थे।
जयानंद प्रभु वाज आल्सो वेरी पर्सनल।
और जयानंद प्रभु का भी ऐसा ही स्वभाव था।
सो बिकॉज़ ही वाज पतित पावना, सो इवन द नॉन डिवोटीज लव्ड जयानंद।
तो क्योंकि वो पतित पावन थे तो जो अभक्त थे वो भी जयानंद प्रभु से बहुत प्रेम किया करते थे।
He liked to do things like buying for the temple, buying bhoga, buying, seeing that repairs were done. He liked doing these kind of, it's called menial service. Menial, you know the word menial? Yes. That means manual things, you know. That was his preference, you know. So he would go out and do buying. So many shopkeepers knew Jayananda, and they loved him very much because he was always sweet. Then he would smile, you know, if he's talking to somebody, and if he's going to buy something, then he would smile, you know.
तो जैनन टू से सभी प्रेम क्या करते थे? जैनन टू क्या हमेशा एक दिलचस्पी रहा करती थी कि वो मेहनत वाला काम करें, तो वो मंदिर के लिए खरीदारी क्या करते थे खाने की और बाकी सामान की, और जिसके पास जा करते थे इतने मुस्कुरा से बात करते, मुस्कुरा के बात किया करते थे कि लोग जो है उनको बहुत पसंद किया करते थे.
Great good fortune of the storekeepers. Haribol. The great good fortune of the storekeepers is that they became attached to Jayananda. So, and since he's a Vaishnav, and since he was a Mahatma, now the right word to describe Jayananda instead of Thakur is Mahatma. Mahatma. Certainly he was Mahatma. About that there's no doubt.
तो जैनन टू के लिए जो सही शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठाकुर की जगह, वो है महात्मा. निश्चित रूप से वो एक महात्मा थे, और जितने भी दुकानदार थे उस जगह के, उनका बहुत अच्छा सौभाग्य था कि वो जैनन प्रभु से आसक्त थे, उनसे प्रेम किया करते थे. और जैनन प्रभु क्योंकि महात्मा थे, इसलिए उनका एक दुकानदारों का एक सौभाग्य की बात थी.
If a non-devotee can become attached to a Vaishnava, even if they don't know the philosophy and don't know any personal information about that person, if they develop love for a Vaishnava, they will be saved.
तो अगर कोई अभक्त किसी वैष्णव से आसक्त हो जाए, अगर वो ठीक ठीक तरीके से सिद्धांत को नहीं समझता हो, या उस भक्त को इतनी निजी रूप से नहीं भी जानता हो, लेकिन अगर वो किसी वैष्णव से आसक्त हो जाए तो ये उसका सौभाग्य है.
So when the Jayananda, I knew him in San Francisco, Northern California, USA, on the west coast, northwest coast of the United States, is a city called San Francisco. That was when I worked shoulder to shoulder with Jayananda.
तो मैंने जैनन प्रभु के साथ स्वयं काम किया है, और जैनन प्रभु सैन फ्रांसिस्को जो पश्चिमी कोने में है अमेरिका के, वहाँ पर उस मंदिर में सेवा किया करते थे.
So it was very sad later when he moved to Los Angeles.
और कुछ दिनों बाद जो है वो लॉस एंजेलिस मंदिर चले गए.
When he left his body, he was in Los Angeles.
और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो लॉस एंजेलिस मंदिर में थे.
Some kind of cancer, I think.
और उनको कैंसर हो गया था जिससे उन्होंने शरीर छोड़ा.
But in the San Francisco Bay Area, that's where he did his most famous service. Well, he did the Los Angeles War Theater also. He may have been the one may have been the one that started the Los Angeles War Theater.
तो वो भक्त थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपनी मुख्य मुख्य सेवा सैन फ्रांसिस्को में की, लेकिन जब वो लॉस एंजेलिस में गए तो लॉस एंजेलिस में रथ यात्रा का आयोजन करने वाले भी जैनन प्रभु ही थे.
But I knew him in San Francisco, which is about 1600 kilometers north of Los Angeles. I knew him in San Francisco between 1968 and 1970, about 2 years where I had intimate association with Jayananda Prabhu.
So, San Francisco, जो कि उत्तरी दिशा में है लॉस एंजेलिस से करीबन 1600 किलोमीटर की दूरी में है, तो मैं वहाँ पर जैनन प्रभु के साथ 2 साल रहा.
So when he left his body, the non-devotees, the shopkeepers, they asked his legal name was Jim.
तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो दुकानदार पूछने के लिए आया कि वो जिम कहाँ पर है.
They missed him so much. They are so-called non-devotees, but they missed him so much.
और वो जिम को या जैनन प्रभु को से इतना प्रेम किया करते थे, इतनी उनकी याद उनको सताती थी कि वो अक्सर आके पूछा करते थे कि जिम कहाँ है, जिम कहाँ है.
They were bewildered.
और वो परेशान थे, दुखी थे.
They could not understand.
और वो समझ नहीं पाए.
They would ask the other devotees, then would come to the same shop to do the usual buying.
और जब उन्हीं दुकानदारों के पास जो है जो दूसरे भक्त आए,
The storekeepers would say, "Where's Jim? What happened to Jim?" Because he was such a loving person, he gave his love to everybody without discrimination. That is a sign of a Mahatma. He gave his love without discrimination to everybody. So all the storekeepers, they love Jayananda, literally, seriously. It's not an exaggeration. That wasn't just a sentimental thing. They had genuine love for him, so they are all liberated souls because they had love for a pure Vaishnava.
जैनन प्रभु का एक बहुत विशेष गुण हुआ करता था कि वो सभी से प्रेम किया करते थे. तो दुकानदार भी उनसे इतना प्रेम किया करते थे कि हमेशा उनको याद किया करते थे. और क्योंकि वो एक ऐसे वैष्णव से आसक्त हो गए तो निश्चित रूप से वो जो है तर जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे.
जैनन नेवर ही नेवर सॉट आउट रिकॉग्निशन, नेवर लुक्ड फॉर रिकॉग्निशन. ही वाज हैड जीरो डिजायर फॉर प्रतिष्ठा.
और जैनन प्रभु की कोई इच्छा नहीं थी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की.
So he went through different changes. He was actually a married man for a short while. Things didn't go so good. It was not the right ashram for him.
और वो एक शादीशुदा भक्त थे और बड़ी जल्दी उन्होंने इस आश्रम को त्याग दिया था.
So his outstanding quality, now we're talking about devotee, so many decades later we're talking about, ISKCON is talking about devotee care, GBC is talking about devotee care.
So, ab kai saalon ke baad, kai sadiyon ke baad, jo hai, ab ISKCON jo hai, devotee care ke upar charcha kar raha hai.
But that was Jayananda's outstanding quality, that he, part of his anxiety, a big part of his anxiety was following Prabhupada's desire to take care of the devotees. So he always had an anxiety to see that the devotees were okay and taken care of.
और ये भक्तों का ध्यान रखना उनका एक विशेष गुण था. और वो शिला प्रभुपाद जी के, जो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे उनकी इच्छा अनुसार जो हमेशा चिंता किया करते थे कैसे भक्तों का ध्यान रखें.
Jayananda was not an intellectual. It would be a mistake to describe him as an intellectual. In other words, university, very, we say in America, cerebral front brain lobe, you know, cerebellus is the front brain lobe for intellectual activity, you know. He was not really an intellectual, he was a very simple person.
General Prabhu bahut hi sadharan vyakti the, ki bahut bade pandit ya koi buddhiman aise bhakt nahi the, bahut hi saral aur sadharan bhakt.
Although he loved to do all kinds of hard, dirty work, like I say, changing a tire on a car, building the Roth cars, you know.
जो रथ यात्रा की जो रथ होते हैं उनको बनाया करते थे या साधारण साधन सेवाएं क्या करते थे, टायर बदलना ऐसे इत्यादि.
But he also was brahminical at the same time because, like I say, if a Brahman, a transcendental Brahman, can change a tire in a car and not become a sutra. See, the idea that smarter Brahmins, no, that is sutra. I cannot touch, go higher, go get sutra. I cannot touch. This is nonsense. A Vaishnav does not think or behave like that.
So, और उनके अंदर ब्राह्मण गुण भी थे. हालांकि ये सोचना गलत है कि कोई ब्राह्मण जो है वो श्री कृष्ण की कोई कोई सेवा के रूप में उनकी गाड़ी का टायर नहीं बदल सकते. जो स्मृत ब्राह्मण है वो सोच सकते हैं नहीं, शूद्र का काम है, हम ये काम नहीं कर सकते. लेकिन एक वैष्णव ऐसा नहीं सोचता.
Although he was not an intellectual, but he also gave Bhagavad Gita classes.
हालांकि वो बहुत बड़े पंडित नहीं थे लेकिन निश्चित रूप से भगवद गीता की बहुत अच्छी कक्षाएं दिया करते थे.
And they were simple classes, very simple classes, because he was a simple person.
और वो बहुत ही सरल और साधारण जो हैं वो क्लासेस लिया करते थे क्योंकि उनका व्यवहार, उनका स्वभाव भी वैसे ही था.
They were not the kind of classes you would hear from somebody who had their doctorate degree in philosophy. It was like that. He's just a simple person trying to understand. That does not diminish his good qualities of devotion and his purity. It doesn't diminish it. Just means he was a simple person.
तो वो उनका जो है जो कक्षा लिया करते थे वो बहुत ही सरल और जो है सीधी सीधी हुआ करती थी. ऐसा नहीं होता था कि जिस प्रकार से जिसने डॉक्टर डिग्री ली हो दर्शन में या सिद्धांत में वो ऐसे कोई कक्षा ले रहा हो, ये उनका कोई अवगुण नहीं था, ये क्योंकि उनके उनका स्वभाव सरल था तो उसी तरीके से वो आगे प्रचार भी किया करते थे.
I've already said that he had no interest in honor. That's very rare.
जैसे मैंने आपको बताया कि उनका पूजा लाभ प्रतिष्ठा में कोई रुचि नहीं थी.
Even in our society, our ISKCON society, devotees who have zero desire for honor are rarely found, because most people, you know, most devotees, Gaudiya Vaishnavas also, they have at least some desire for honor, but Jayananda didn't have any.
तो ये बहुत ही दुर्लभ है कि बहुत कम भक्तों में वास्तव में देखा जाता है जिनकी कोई इच्छा नहीं है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की. हालांकि जितने भी गौड़िया वैष्णव में हो सकता है उनमें कुछ कुछ इच्छा हो, लेकिन जैनन वो ऐसे भक्त है जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी.
This indicates that he was a genuine madhyam adhikari.
तो इससे पता चलता है वास्तव रूप में वो एक मध्यम अधिकारी स्तर पर थे.
Because, of course, his faith and love for Prabhupada was powerful.
क्योंकि उनकी श्रद्धा और प्रेम प्रभुपाद के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ थी.
But Prabhupada makes one shocking statement that if anyone has a desire for honor, they are kanishtha adhikari.
तो प्रभुपाद एक जगह बहुत ही चुकाने वाली बात कहते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी की थोड़ी सी भी इच्छा हो प्रतिष्ठा की पूजा की तो वो एक कनिष्ठ अधिकारी है.
Can anyone sitting here, including myself, say they have no desire for honor, zero desire for honor? Let's see your hands, please.
तो महाराज पूछ रहे हैं हम सब भक्तों से कि ऐसा कोई भक्त है इस सभा में जिसके कोई इच्छा नहीं है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, तो ऐसा जो उन्नत भक्त है कृपा करके हाथ ऊपर खड़ा करें.
No desire for honor.
तो इस गेस केशव राय पूजी की जो है कोई इच्छा नहीं है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की मान की. हरि वाह.
You're 100% money wanna carry them. So this means that Jayananda Prabhu was a genuine Madhyamadhikari because, and of course he had love for Krishna also. Look, past tense, I'm speaking past tense, but he is with Krishna now. Oh yes, I should tell that.
इस समय पता चलता है कि जैनन प्रभु 100% एक मध्यम अधिकारी स्तर पर थे भक्त थे. और मैं आपको बहुत ही एक दिलचस्प बात बताना जा रहा हूँ.
I think this is in the Leelamrita. You've probably heard it before, but it's an important part of honoring Jayananda Prabhu.
और ये आपको लीलामृत में मिलेगा जैनन प्रभु के बारे में.
When Jayananda Prabhu left his body, Prabhupada did something very extraordinary and almost unprecedented in Vaishnava history.
और लीलामृत में ऐसा लिखा है कि जब जैनन प्रभु ने शरीर छोड़ा तो जब प्रभुपाद जी आए उनको पता चला तो उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही उनके बारे में जो कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया.
Although Jayananda had departed, Prabhupada wrote him a letter. I think it's in the Leelamrita.
और
he wrote a departed Vaishnava, his beloved son. He wrote a letter, although he had already left his body. This is most extraordinary, but this is a historical fact. And I think the letter is in the Leelamrita.
और लीलामृत में महाराज कह रहे हैं शायद वो घटना है जब प्रभुपाद जी को पता चला जैनन प्रभु ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लीलामृत में है.
There were two particularly important points in that letter.
और चिट्ठी में दो महत्वपूर्ण बातें लिखी थी.
He said, Prabhupada said, of course he honored Jayananda in the letter and expressed his love for him.
और चिट्ठी में प्रभुपाद जी ने अपना प्रेम और जैनन प्रभु का गुणगान लिखा था.
So he wrote, if you had any material desires remaining, then you may have gone to the heavenly planets. This is very significant.
और प्रभुपाद जी ने चिट्ठी में लिखा कि अगर आपके पास कोई भी भौतिक इच्छा है, तो आप स्वर्ग लोक तक ही जा पाएंगे.
I'll say it again because Prabhupada says sometimes repetition is necessary.
तो मैं इस बात को दोहराऊंगा क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी दोहराना जरूरी है चीजों को समझने के लिए.
To a very elevated soul, and there's certainly, although I have pointed out that he acted like an ordinary man almost 100% of the time, but he was an elevated soul. Of this, there's no doubt.
तो जैनन प्रभु हालांकि बहुत ही साधारण रूप से रहते थे, व्यवहार करते थे, लेकिन वो निश्चित रूप से उनकी चेतना बहुत ही उन्नत थी.
But generally, devotees who are transferred to the heavenly planets, they've got strong material desires, although they're Vaishnav.
तो उन भक्त जो कि जो सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही जा पाते हैं, उनके अंदर बहुत ही प्रकार भौतिक इच्छाएं होती हैं.
So Srila Prabhupada wrote, if you had any material desires, then you may have gone to the heavenly planets.
और श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आपके पास भौतिक इच्छाएं हैं तो आप सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं.
So this statement is very important. This is Shastra. What's spoken by Mahabhagwat and written by Mahabhagwat is Shastra automatically.
तो प्रभुपाद जी की ये बातें जो हैं शास्त्र के समान ही हैं क्योंकि एक महाभक्त ने इसको बोला है और लिखा है.
What a Mahabhagwat says is as good as Srimad Bhagavatam.
जो महाभागवत कहता है वो श्रीमद् भागवतम के वाक्य से अभिन्न है.
So Prabhupada said, if you had any material desires, you may have gone to the heavenly planets.
श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर आपकी भौतिक इच्छा है,
so we have to be
सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं.
We have to be very careful what we desire.
इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हम कैसी इच्छाएं अपने अंदर रख रहे हैं.
For them, the second point Prabhupada makes. Then he, having said you may have gone to the heavenly planets, but then the next point he says is, but I don't think so.
फिर प्रभुपाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हालांकि कोई भक्त जिसके अंदर भौतिक इच्छा है वो स्वर्ग लोक तक जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जैनन प्रभु वहां स्वर्ग लोकों में गए होंगे.
In other words, his real actual destination was back to home, back to Godhead.
इसका मतलब यह है जैनन प्रभु की असली गति जो है वो भगवत धाम तक हुई.
Lesser persons have gone back to Godhead, so then how Jayananda could not have gone back to Godhead?
So जैनन प्रभु निश्चित रूप से भगवत धाम गए होंगे.
So just to give you an idea of Jayananda's mood.
तो बस आपको एक उदाहरण रूप में कि जैनन प्रभु का कैसा सोचना का तरीका हुआ करता था, मूड हुआ करता था.
The 1970 रथ यात्रा.
1970 की रथ यात्रा में.
San Francisco
में.
Now a little known fact is that was the first year. You've seen the photographs and films are there of that 1970 Rath Yatra, San Francisco. It was the first time ever that a scale model of the Rath car in Puri was made in ISKCON. Now we don't have any more scale models.
तो ये बात बहुत कम भक्तों को पता है कि जब सैन फ्रांसिस्को में 1970 में रथ यात्रा निकली तो रथ यात्रा हूबहू वैसे ही थी जैसे जगन्नाथ पुरी में चलती है.
But to give you an idea of Jayananda's humility, although he's famous for Rath Yatra, and Prabhupada, as you know, has gave the order that his picture should be on every Rath car. So that's done. Most Rath cars have a picture of Jayananda in ISKCON.
Srila Prabhupada ji ne aisa bola tha ki Jayanand Prabhu ki jo ki tasveer hai wo har Rath Yatra mein Rath pe honi chahiye.
Big picture on the Rohini Rath Yatra, yes, because this is Prabhupada's instruction.
तो केशव महाराज गुरु जी कह रहे हैं कि इस बार जब रोहिणी में रथ यात्रा निकली थी तो हमने जो है जैनन प्रभु की बहुत सुंदर बड़ी तस्वीर उस रथ में रखी थी.
But I have to say that the 1970 Rath Yatra, huge chariot, that chariot, believe it or not, was round about the height of this building.
तो
oh yes, there's never been a chariot that size made again.
तो आप शायद माने ना माने, लेकिन जब 1970 में रथ यात्रा निकली थी सैन फ्रांसिस्को में, तो रथ इतना ही बड़ा था जितनी बड़ी बिल्डिंग है.
But it wasn't Jayananda's idea to make a model just like Puri. It wasn't Jayananda's idea.
Jayanand Puri का सोच नहीं था कि हम बिल्कुल वैसे ही रथ बनाए जैसे कि जगन्नाथ पुरी में चलता है.
It was my brother's idea, Narayan.
मेरे भाई का idea था.
He wanted to make a scale model of the Rath car, and it's never been done again. It was after that cart went into history. Giant wooden wheels. The wooden wheels on that chariot were as tall as that blue line on this column. Wooden, solid wood wheels.
और ऐसा इतना बड़ा रथ पहले कभी नहीं बना. ये मेरे भाई, मेरे जो भाई थे उनकी ऐसी सोच थी कि उतना ही बड़ा रथ बनाए, और जो रथ का पहिया था उतना ऊंचा था जितने ये जो नीली लाइन है.
Wheels alone were 4 meters tall. In other words,
तो 4 meter लंबा जो है वो पहिया था रथ का.
There's a few photographs.
और ऐसी कुछ ऐसी photographs आप देख सकते हैं.
But you won't find them in the Leelam region. Well, yeah, there might be a photo of 1970 Rath Yatra. There might be a photograph of that car in Leelam region.
तो लीलम में शायद आप जो है 1970 के रथ यात्रा की कुछ photographs आप देख सकते हैं.
So although Jayananda was known as Mr. Rath Yatra,
और जयनंद प्रभु को मिस्टर रथ यात्रा भी कहा करते थे.
Well, that particular year, because Narayan had designed the chariots, Bhavananda was there also.
So, us rath yatra mein Bhavanand Prabhu bhi the.
Jayananda took the humble position to give an idea of his. Jayananda was not in charge. The mythology is that Jayananda was always in charge of rath yatra. It's not true.
ये सही नहीं है ये कहना कि जयनंद प्रभु जो है रथ यात्रा के इंचार्ज थे, ऐसा नहीं था.
But that 1970 Rath Yatra, my brother was in charge.
उस रथ यात्रा के इंचार्ज जो है मेरे भाई थे.
Jayananda just took a humble position as his assistant.
जयनंद प्रभु ने बहुत ही विनम्र तरीके से उनके असिस्टेंट बने थे.
Is one example of evidence that he just had no pride at all, you know, no false ego.
ये प्रमाण है कि उनके अंदर कोई भी अभिमान नहीं था.
So we didn't have any place to build the cart, so we got permission from a supermarket to build the chariot on a parking lot. It was a very large parking lot. There was extra space. Probably Jayananda got the permission to build the chariot on the parking lot of the supermarket.
तो हमारे पास तो कोई जगह नहीं थी इतने बड़ा रथ बनाने के लिए. तो जयनंद प्रभु ने एक सुपरमार्केट से जो है वो उनका जो पार्किंग लॉट था उसकी परमिशन लेके वहां पर हमने इतना बड़ा रथ बनाया.
And working on, I worked on that personally also on that project, so I know about it.
और मैंने निजी रूप से उस सेवा में मैंने की है, तो इसलिए मुझे उसके बारे में पता है.
It was a huge project. That was that year that my brother and Jayananda and Bhavananda worked together designing the first ever telescoping. You know what telescoping means? Folding steel shaft up and down on the Rath cars. Now they're everywhere in ISKCON. It is there, different model versions. The original one was designed that year in San Francisco by my brother, primarily, and Jayananda then, and also Bhavananda. Together they were brainstorming how to make this with a crank on. It was manual. Now we have motorized.
तो पहली बार उस रथ में जो है, जो आप ISKCON में अब हर रथ में देखेंगे कि जो ऊपर की शाफ्ट होता है वो ऊपर नीचे जा सकता है. तो पहली बार जो है जयनंद प्रभु ने, भावानंद प्रभु ने और मेरे भाई ने मिलकर सोचा था कैसे क्रैंक से जो है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं.
Although this parking lot where the chariot was located was walking distance from the temple.
और जो पार्किंग लॉट था जहां हमने रथ बनाया था वो बस चलने की दूरी पर ही था हमारे मंदिर से.
But Jayananda preferred to live in a plywood box, a large plywood box. He built a large plywood box under the chariot and he lived there. He camped out. I'm serious. This gives you an idea of his personality. He camped out in this this plywood box, a large plywood box about, you know what, 8 meters wide or so. And then he had his sleeping bag and paraphernalia. And the devotees used to bring him prasad from the temple because he would be working like 15-hour days, you know.
आप जान के बहुत हैरान होंगे कि जयनंद प्रभु क्या क्या करते थे कि रथ बनाते समय रथ के नीचे एक बहुत बड़ा बक्सा उन्होंने बनाया था करीबन 8 मीटर चौड़ा उसी में राह करते थे 15-15 घंटे बनाया करते थे रथ को और भक्त लोग जो है उनकी सेवा देखकर मंदिर से उनके प्रसाद लाया करते
सो दैट वाज अ ग्रेट ग्लोरी हार्ड वर्क फॉर प्रभुपाद हार्ड वर्क फॉर कृष्णा दैट वाज
और उन्होंने बहुत मेहनत की श्रील प्रभुपाद जी के लिए इस आंदोलन के लिए हरे कृष्ण आंदोलन के लिए
Of course, he was very generous also. His mother gave a $10,000 donation for the printing of Nectar Devotion. I believe the acknowledgement, I think, is in the front of the book, isn't it? Yes. $10,000, if you multiply that, $1,000 now is 60,000 rupees. 60,000 times... Six.
Six lakh.
Huh? So explain how many rupees it is. You see.
तो महाराज बता रहे हैं कि जयनंद प्रभु की माँ ने जो है मदर ने उनकी माता श्री ने जो है वो करीबन उस वक्त किताबों के प्रकाशन के लिए जो भक्ति स्वामी सिंधु प्रभुपाद जी की है नेक्टर डिवोशन उसके छापने के लिए $10,000 जो कि उस वक्त करीबन 6 लाख रुपए
He had no use for money. He had no attachment. That's another sign of a pure devotee. He had no attachment for money. Really, none whatsoever. Because he was not at all attached. He could have claimed that money, but he wanted, out of love, to give that money to Prabhupada to print that book. And Prabhupada happily accepted.
और इससे हमें एक बात चलता है कि वो पैसों से आसक्त नहीं थे, जो कि एक और शुद्ध भक्त का लक्षण है, कि वो पैसों से आसक्त नहीं होता है। और जो पैसे उनके पास थे $10,000 वो उन्होंने किताबों के छापने के लिए प्रभुपाद जी को दिया जो कि प्रभुपाद जी ने स्वीकार किए
सो आई होप दैट एनीथिंग आई हैव सेड शुड नॉट बी यू नो द वर्ड कंस्ट्रूड इंटरप्रेटेड शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू डिमिनिश हिज पोजीशन एज अ महात्मा व्हिच इज द राइट टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग हिम
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो कुछ भी बोला उसको सही तरीके से ही लिया जाएगा गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा और आप ये बात अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जयनंद प्रभु वास्तव रूप में एक महात्मा थे जो कि सही शब्द है उनको समझाने के लिए उनके बारे में
एक्सेप्शनली लविंग पर्सन
वो बहुत ही प्रेमशील जो प्रेम किया करते थे बाकी भक्तों से
He would smile the most.
और बहुत मुस्कुराते थे
When he was talking with a devotee.
जब दूसरे भक्तों से बात करते थे
Then he'd go back to worrying. He always had something to worry about. But his worries were transcendental because he was worrying about devotional service. He wasn't worrying about his body. Even when he wasn't worrying about his body. He was worrying about...
So, वो हमेशा चिंता में रहा करते थे, आध्यात्मिक चिंता में, लेकिन जब भक्तों से मिलते थे, खूब मुस्कुराते थे, और भक्तों के मिलने के बाद दोबारा चिंता में जो है डूब जाते थे.
Of course, if Chayananda were still with us, devotees would have pressurized him to become an ISKCON guru, you know. And he would not have wanted to have anything to do with it, just because although he had the heart for it and the knowledge for it, but he would never have accepted that kind of position. He just couldn't handle that much pratistha.
So, कितने सारे भक्त उनको कहते थे कि वो एक इस आगे जाके एक इस्कॉन गुरु जरूर बने हालांकि उनके अंदर योग्यता थी इस बात की लेकिन वो कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया करते
So, I wish that he were still with us.
मैं आशा करता हूँ कि अगर वो हमारे साथ रहते तो और भी बहुत अच्छा होता
If he were still with us, he would be also very famous in ISKCON just for his good qualities.
और अगर वो होते निश्चित रूप से तो वो बहुत ही प्रसिद्ध होते इस कॉन में अपने अच्छे गुणों के लिए
Even if he didn't have a big portfolio, you know?
हो सकता है उनका कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन नहीं होती लेकिन अपने अच्छे गुणों के लिए भक्तों के गुणों के
लिए So I'm using the word pure devotee mean who sold out to Prabhupada. That's how I'm using the word pure devotee. Not Paramahansa, not Mahabhagavat, but pure devotee. Try to understand. One who sold out in our line of disciplic session and follows the vani of Prabhupada, that person can be called pure devotee. He was a pure devotee and therefore we're honoring him all over the world.
So, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि शुद्ध भक्त का मतलब ये है जो कि गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो उनके मिशन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित।
So we'll stop there. Anybody
have any? हम विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
Anybody have any question? I hope you have a better understanding of Jayananda now. This is the human side of Jayananda.
जयनंद के बारे में आप और अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं।
His human side did not diminish his saintly qualities at all, so there should be no thought that he was an ordinary person. He was not an ordinary person. He was not an ordinary devotee.
और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनका गुणगान में या उनके ख्याति में जो है कुछ घटौती नहीं की है और आप उनको सही तरीके से समझ पाए हैं, जान पाए हैं।
Yeah, actually, I just remembered one last thing that I had a conversation with Jayananda once on a philosophical point. I said he was not an intellectual, but he certainly was strong in the philosophy of Krishna consciousness. When I was new devotee, very new devotee, you know, and he was already a couple of years senior to me. That was considered, a two-year devotee was considered very senior in those days. I'm serious. A two-year devotee in those days, two-year devotee was considered very senior.
तो एक बारी मेरा उनसे कुछ बातचीत हुई थी और जयनंद बू हालांकि बहुत बड़े पंडित नहीं थे लेकिन सिद्धांत पे बहुत पक्के थे और उस वक्त तो ऐसा होता था कि वो मुझे दो तीन साल जो है भक्ति में पहले आए थे तो कोई दो तीन साल पुराना भक्ति बहुत सीनियर भक्त हुआ करता।
So at most he must have been two years senior to me, at most maybe a year and a half, you know, because the movement was so new.
तो डेढ़ दो साल पहले ही मुझसे आए थे क्योंकि हाल ही में ही आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ था।
So I was having a philosophical talk with him one day.
तो एक दिन मैं जो उनके सिद्धांत के ऊपर कुछ चर्चा कर रहा था।
On the Bhagavad Gita.
भगवत गीता के ऊपर।
Although I described him as not being intellectual, but nevertheless he was very intelligent. Certainly.
हालांकि वो कोई बड़े पंडित नहीं थे लेकिन निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान थे।
So we had a transcendental disagreement.
तो हमारा एक आध्यात्मिक जो है डिसएग्रीमेंट।
Because in the Bhagavad Gita, Krishna promises, I will always protect my devotee.
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ।
I took the position that meant that Krishna would always protect the body of the devotee also, as well as the soul.
तो मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण जो है इस सिद्धांत जो है कि कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कृष्ण अपने भक्तों के शरीर और आत्मा दोनों की सुरक्षा करते हैं।
जयनंद tried to correct me.
जयनंद मुझे जो है करेक्ट कर रहे थे, ठीक बता रहे थे।
No, he said, Krishna's promise is to protect the soul, not necessarily the body. And I disagreed. I thought, no, the Krishna will protect the body also. I said, we had this discussion, this istakosi.
तो जयनंद को कह रहे थे कि नहीं, कृष्ण सिर्फ जो भक्त है या जो आत्मा है उसी की सुरक्षा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा था नहीं, भक्त की भी सुरक्षा करते हैं, जीवात्मा की और शरीर की भी सुरक्षा करते हैं। इस बात पे हमारा जो है डिसएग्रीमेंट।
But it turns out that Jayananda was correct and I was mistaken. Of course, what did I? I was a one-year devotee, a new, very neophyte, very green. So later we see devotees dying in car accidents, airplane accidents, you know, we see different things happening, different disasters happening from time to time to devotees. So Jayananda was correct. He knew that. He was intelligent, so he outsmarted me. So I mean, he knew the Siddhanta better than me.
तो बाद में पता चला कि जयनंद वो एक रूप से बिल्कुल ठीक थे। हालांकि हम देखते हैं कुछ भक्तों के साथ कभी-कभी ऐसे कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भगवान हमेशा उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी आत्मा की हमेशा सुरक्षा करते हैं।
Jayananda Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gopremanandi Hari Hari Bo.
I cannot do it without. body pump, chemistry will change.
Negative.
Thank you.